नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 में अनियमितताओं के मामले की जांच सीबीआई को सौंपा। आज होने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा स्थगित, परीक्षा की नई तिथि जल्द होगी घोषित। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने प्लेटफार्म टिकट पर जीएसटी हटाया। स्टील, लोहा और एल्यूमिनियम निर्मित दूध के डिब्बों पर एक समान 12% जीएसटी लगाने की सिफारिश की। और प्रदेश में मॉनसून की गतिविधियां कल से बढ़ने की संभावना। मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी और उत्तर पूर्व भागों के कई स्थानों पर बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 में कथित अनियमितताओं का मामला व्यापक जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दिया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि सरकार परीक्षाओं में विद्यार्थियों का हित सुनिश्चित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि कोई व्यक्ति या संगठन इस मामले में लिप्त पाया जाता है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं केंद्र सरकार ने परीक्षाओं में कदाचार रोकने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 लागू कर दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने पिछले महीने की 5 तारीख को नीट यूजी परीक्षा संचालित की थी। परिणाम आने के बाद परीक्षा में अनियमितता बरते जाने और जालसाजी के आरोप लगे थे। बिहार पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा 2024 में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में झारखंड के देवघर जिले से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। देवघर के अनुमंडल पुलिस अधिकारी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि संदिग्धों को देवीपुर पुलिस थाना क्षेत्र में एम्स देवघर के निकट के एक मकान से पकड़ा गया और बाद में बिहार भेज दिया गया है। गौरतलब है कि बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई इस मामले की छानबीन कर रही है। नीट यूजी के 1563 छात्र आज देश के विभिन्न केंद्रों पर फिर से परीक्षा दे रहे हैं। इन केंद्रों पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। गौरतलब है कि देश के 6 केंद्रों पर परीक्षा शुरू होने में देरी के कारण समय के नुकसान के लिए छात्रों को ग्रेस अंक दिए गए थे, जिन्हें बाद में वापस ले लिया गया था। नीट परीक्षा परिणामों को लेकर उठे विवाद के बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को उनके पद से हटा दिया गया है। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नीट पीजी प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। यह परीक्षा आज होने वाली थी। परीक्षा की नई तिथि की जल्द ही घोषणा की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह निर्णय कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित कदाचार के हाल के आरोपों के बाद लिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि मेडिकल विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा संचालित नीट पीजी प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया का समग्र आकलन कराने का फैसला किया गया है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने स्टील, लोहा और एल्युमिनियम निर्मित दूध के डिब्बों पर एक समान 12% जीएसटी लगाने की सिफारिश की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने नई दिल्ली में 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद कहा कि अखिल भारतीय स्तर पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण शुरू होने जा रहा है। इससे सरकार को फर्जी चालान के जरिए किए गए फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों से निपटने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे में प्लेटफार्म टिकट, प्रतीक्षालय और विश्राम कक्ष समेत यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही कई सुविधाओं को जीएसटी के दायरे के बाहर कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकारी मुकदमे कम करने के उद्देश्य से परिषद ने विभाग द्वारा अपील दायर करने के लिए जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रूपये, उच्च न्यायालय के लिए 1 करोड़ रूपये और उच्चतम न्यायालय के लिए 2 करोड़ रूपये की सीमा की सिफारिश की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि समय से कर अंतरण, वित्त आयोग अनुदान और जीएसटी क्षतिपूर्ति बकाया की केंद्रीय सहायता का उद्देश्य राज्यों के विकास को गति देना है। बिहार समेत कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श में श्रीमती सीतारमन ने राज्यों से केंद्र की विशेष पूंजी निवेश सहायता योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अधिकांश ऋण समायोजी हैं। कुछ ऋणों के लिए जन केंद्रित सुधार और क्षेत्र विशेष पूंजीगत परियोजनाएं लागू करने की शर्त है। बैठक में बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री के साथ अन्य राज्यों के वित्त मंत्री उपस्थित थे।
उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पूर्व चर्चा में भाग लेते हुए राज्य के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत मदद देने का अनुरोध किया है। उन्होंने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के सामने कई मांगे रखी हैं। उप मुख्यमंत्री ने प्रदेश को 7 मेडिकल कॉलेजों और 9 नए एयरपोर्ट के विकास के लिए मदद देने का अनुरोध किया। उन्होंने राज्य की महत्वाकांक्षी कोसी मेची लिंक नदी जोड़ परियोजना के लिए चालू वित्त वर्ष में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। साथ ही रसोई सहायकों के लिए मानदेय बढ़ोतरी और प्रारंभिक शिक्षा तथा शिक्षकों के वेतन के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अतिरिक्त फंड की मांग की। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज उच्चस्तरीय बैठक में देश में बाढ़ प्रबंधन की समग्र तैयारियों की समीक्षा करेंगे। यह बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि हर साल मॉनसून की बारिश के दौरान बिहार, असम और अन्य पूर्वी राज्यों में नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने से बाढ़ आता है और लोगों के जनजीवन पर असर पड़ता है। इसे निजात पाने के लिए बाढ़ प्रबंधन की तैयारी की जाएगी। राज्य के भूमिहीनों को 3 डिसमिल जमीन दी जाएगी। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि प्रदेश के सभी जिलों में शिविर लगाकर भूमिहीन लोगों के बीच वासगी पर्चा वितरित किया जाएगा। किशनगंज में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 करोड़ आवास बनाने की घोषणा की है, उसका सीधा लाभ प्रदेश के गरीब नागरिकों को भी मिले, इसके लिए यह कदम उठाया जा रहा है।
कि जितने भी भूमिहीन बिहार में हैं, उनको कैंप लगा करके बासगीत पर्चा और जमीन 3 डिसमिल उनको उपलब्ध कराया जाए, जिससे प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा किया है कि 3 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास गरीब का बनाया जाए, उसका फायदा बिहार को भी मिल सके।
राजस्व मंत्री ने कहा कि अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चकबंदी कार्य फिर से शुरू की जा रही है, इसके साथ ही भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है।
चकबंदी का समस्या है, उस चकबंदी का शुरुआत होने जा रहा है और भ्रष्टाचार मुक्त राजस्व विभाग हो, जो कि राजस्व विभाग के अंचल स्तर पर और अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार की काफी शिकायत आ रही है कि बिना पैसा लिए जमाबंदी और म्यूटेशन परिमार्जन ये सब नहीं होता है, तो मैंने 3 दर्जन अंचलाधिकारी पर और अन्य पदाधिकारी पर विभागीय कार्रवाई शुरू किया है और उनको कड़ी सजा मिलेगी।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री दलाई लामा ने कहा कि वह भारत में युवाओं के बीच प्राचीन भारतीय ज्ञान और बुद्धिमत्ता में बढ़ती रूचि से उत्साहित हैं। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र के दौरान 9 निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। वरिष्ठ भाजपा सांसद और अस्थायी अध्यक्ष भृतिहरि महताब लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव इस महीने की 26 जून का होगा। अगले दिन 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। संसद सत्र अगले महीने की 3 तारीख तक चलेगा। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही राज्य में निर्यात और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए एपेडा का क्षेत्रीय कार्यालय खोलेगी। राजधानी पटना के ज्ञान भवन में 2 दिवसीय आम महोत्सव के उद्घाटन के मौके पर श्री पांडे ने कहा कि इससे फल निर्यात करने में किसानों को आसानी होगी और उन्हें उत्पादन का बेहतर मूल्य दिलाने में मदद मिलेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में 15% हरित भूमि है, इसे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में उत्पादित आम और लीची सहित अन्य फलों को विदेशों में भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने विद्युत वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 2 नए मानक लागू किए हैं। ये मानक बैटरी की सुरक्षा और सक्षमता पर बल देते हैं। नए मानक LM और N श्रेणियों के बिजली चालित वाहनों के लिए हैं। इसके साथ ही विद्युत वाहन और इनके उपकरणों के लिए भारतीय मानकों की संख्या 30 हो गई है। इनमें चार्जिंग प्रणाली के मानक भी शामिल हैं। नए मानक पर्यावरण अनुकूल परिवहन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। प्रदेश में मॉनसून की गतिविधियां कल से बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इसके प्रभाव से राज्य के उत्तरी और उत्तर पूर्व भागों के कई स्थानों पर बारिश और वज्रपात हो सकती है। इधर आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, अररिया और किशनगंज जिले में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। उन्होंने बताया कि अगले कुछ दिनों तक मॉनसून की गति सामान्य रहेगी और यह राज्य के दक्षिणी भागों में भी पहुंच जाएगी।
अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तर पूर्व भाग के कुछ स्थानों एवं उत्तर पश्चिम दक्षिण बिहार के एक या दो स्थानों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान वजीरगंज में सबसे अधिक 44.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, वहीं अररिया के कुर्साकांटा में 42.4 मिलीमीटर और फारबिसगंज में 33.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। किशनगंज जिले के रामपुर चेक पोस्ट के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक कार से बिना कागजात के नकद 47 लाख रूपये बरामद किया है। पुलिस चालक सहित कार में सवार तीन व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट में एंटीगा में भारत ने बांग्लादेश को 50 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 196 रन बनाए, जबकि बांग्लादेश की पारी 8 विकेट पर 146 रन पर ही सिमट गई। इस जीत के साथ ही भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के निकट पहुंच गया है और बांग्लादेश इस दौर से बाहर हो गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने पटना में आयोजित आम महोत्सव को बड़ी खबर बनाया है। अखबार लिखता है आम महोत्सव में 400 से अधिक किस्मों की लगी है प्रदर्शनी। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है चिकित्सा महाविद्यालयों में नियुक्त होंगे 1339 सहायक प्राध्यापक। दैनिक भास्कर ने नीट परीक्षा पर लिखा है हजारीबाग से लीक हुआ था पर्चा, पेपर बॉक्स से भी हुई थी छेड़छाड़। प्रभात खबर ने T20 वर्ल्ड कप को लेकर पहले पन्ने पर जगह देते हुए लिखा है बांग्लादेश को हरा भारत का सेमीफाइनल में दावा पुख्ता। राष्ट्रीय सहारा ने नीट परीक्षा को बड़ी खबर बनाया है। अखबार का शीर्षक है देवघर से भी 6 हिरासत में, सभी आरोपी नालंदा जिले के हैं निवासी। आज अखबार की सुर्खी है सीवान में गंडक नहर पर बना पुल ध्वस्त। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 में अनियमितताओं के मामले की जांच सीबीआई को सौंपा। आज होने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा स्थगित, परीक्षा की नई तिथि जल्द होगी घोषित। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने प्लेटफॉर्म टिकट पर जीएसटी हटाया। स्टील, लोहा और एल्यूमिनियम निर्मित दूध के डिब्बों पर एक समान 12% जीएसटी लगाने की सिफारिश की। और प्रदेश में मॉनसून की गतिविधियां कल से बढ़ने की संभावना। मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी और उत्तर पूर्व भागों के कई स्थानों पर बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।